हरे कृष्ण। तो आज एकादशी के उत्सव पर आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और एकादशी पर्व जो है ये भी एक उत्सव है भक्तों के लिए, क्योंकि उत्सव का मतलब होता है जिसमें हम लोगों को एनर्जी मिले भगवान की सेवा करने की या भगवान के नामों को का गुणगान करने की, उनकी लीलाओं का व्याख्यान करने की। तो भक्त लोगों के लिए भक्ति में फीस्ट इसी को बोलते हैं। वो बात अलग है कि आज के दिन हमें फीस्ट से दूर रहना पड़ता है, अन्न से दूर रहना पड़ता है, लेकिन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए असली फीस्ट एकादशी ही है, क्योंकि एकादशी वो दिन है जो कि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और भक्तों को इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान को प्रिय है, और इसलिए भी प्रिय है क्योंकि इस दिन भक्त लोग प्रयास करते हैं तपस्या करने का, उन चीजों से दूर रहने का जो हमें रोज आकर्षित करती हैं अपनी ओर, है ना। बताते हैं कि अन्न में प्राण होते हैं ना, तो कलयुग में बताया कि अन्न के अंदर प्राण है, तो अन्न अगर कोई व्यक्ति ना ग्रहण करे एक दिन भी तो उसके शक्ल पर समय देखा जा सकता है कि कितना टाइम हो गया, कितनी देर से इसने खाना नहीं खाया है ना। अगर 12 घंटे होंगे तो 12 बजे होंगे तो ऐसा लगता है। तो लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने हम लोगों पर ऐसी कृपा की, कुछ ऐसे नियम बनाए जो कि किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए फॉलो करना बहुत आसान है। प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण भक्ति दी जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं थी, तो तत्व से सिखाकर फिलोसॉफिकली कृष्ण को स्थापित कर पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति दी। मंत्र अनेक है, लेकिन कौन सा मंत्र दिया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे 1000 के नोट में 500, 100, 50, 20, 10 सब होते हैं अगर खुले कराएं तो, उसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर वेदों के ही नहीं, इसके अलावा जितने और भी मंत्र कहीं पाए जाते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम या और भगवान के विशेषकर दूसरे नाम, उन सब की महिमा, उन सबका फल भी हरे कृष्ण महामंत्र में निहित है। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र हमें खाली इस जगत से ही मुक्त नहीं करता, जन्म बुढ़ापा बीमारी से ही मुक्त नहीं करता, हरे कृष्ण महामंत्र हम लोगों के द्वारा जपे जाने पर यह हमें राधा कृष्ण के बीच में खड़ा कर देता ले जाके, अर्थात उनकी भक्ति उनकी सेवा हमें प्रदान करता है, और ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो हमें इस प्रकार कर सके। तो इसके अंदर भगवान ने अपनी पूरी शक्ति दी है, इसलिए प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार इस मंत्र को पूरे विश्व भर में हमें दिया। और फिर तपस्याओं में कई तरह के लोग व्रत रखते हैं, 16 सोमवार, 40 दिनों का अलग से कुछ वीरवार, पता नहीं किस तरह के कई तरह के व्रत होते हैं, कई बार अलग प्रकार के अनुष्ठान और रिचुअल होते हैं किसी पर्टिकुलर देवी देवता को खुश करने के लिए। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें एकादशी का व्रत कहा, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, अगर भक्त लोग इसका पालन करते हैं तो वो शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहते हैं, मानसिक दृष्टि से भी, और आध्यात्मिकता में भी उन्नति करते हैं, ठीक है ना। और इस संसार का जो निर्माण हुआ है और इस भौतिक जगत का जो निर्माण है और उसमें भगवान का बार बार अवतरित होना, अपने पार्षदों को बार बार भेजना अलग अलग रीजन में, उनके द्वारा कुछ न कुछ ग्रंथों के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा लोगों को कुछ समझाना, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, गिरजाघरों का या मस्जिदों का निर्माण होना, इन सबके पीछे उद्देश्य क्या है? ये जो कंडीशन सोल्स हैं वो लोग जिस भी कैटेगरी में आए हैं, शरीर प्राप्त किया है, वो पर्टिकुलर उस धर्म के नियमों का पालन कर आगे बढ़े, ठीक है ना। तो उसी के चलते जो ये व्रत इत्यादि भी हैं, ये तपस्याएं भी हैं, ये इसलिए हैं ताकि इस संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं जो अपने जीवन के असली लक्ष्य को भूलकर अपने जीवन के लक्ष्य कुछ और चीज को बना चुका है, जैसे हम कल रात को बात कर रहे थे रोहिणी में कि सतयुग का युग धर्म था ध्यान, त्रेता का था यज्ञ त्रेता युग का, और द्वापर युग का था अर्चन, और कलयुग का क्या है? तो कलयुग को धन युग कहा गया है क्योंकि सबकी जो है इच्छाएं लोगों को लगता है कि धन से ही पूरी हो सकती है, इसलिए सबसे बड़ा रुपया कहा जाता है। इसलिए सबकी मानसिकता उस धन के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। जिस प्रकार व्यक्ति धन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, हर समय उसका चिंतन विचार गिनती उसके बारे में प्लानिंग करता है, तो कितना ज्यादा मनी कॉन्शियस रहता है व्यक्ति। तो इसी तरह की मानसिकता भक्त लोग चाहते हैं कि व्यक्ति की होनी चाहिए, किसमें? कृष्ण में होनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति की चेतना भगवान में हो जाए एक जीवन में, तो वो उसकी मुक्ति का कारण बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मंदिर के बाहर निकलने पर हम देखते हैं कि सारी की सारी चीजें हमें ऐसी उपलब्ध हैं जो केवल हमारा ध्यान फिर से उन्हीं और चीजों की ओर आकर्षित करती है, करता है, जो कि हम लोगों को बांधने वाला है या जिसकी वजह से हम कृष्ण को भूले रहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ के केंद्रों से इन सब चीजों का प्रचार किया, सो दैट कि जो लोग भी यहां जुड़ते हैं या भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं या सतोगुण में हैं या जिनका इंक्लाइनेशन है भक्ति की तरफ, तो ऐसे लोगों को ये सब चीजें समझा के उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसलिए ही इन सब मंदिरों की स्थापना हुई है। तो प्रभुपाद जी का बहुत योगदान है इस पूरे विश्व भर में सभी कंडीशन सोल्स के लिए, क्योंकि सबके वो परम गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं सबके लिए। उन्हीं की पुस्तकों को पढ़कर पूरा विश्व जो है समय लाभान्वित हो रहा है। तो हम लोग अपने मंदिरों से प्रभुपाद जी की ही जो चरित्र है, उनकी जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने इस भौतिक जगत में भगवान के द्वारा एक एम्पावर्ड विशेष सेनापति जो इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने क्या लीलाएं की, जिस प्रकार भगवान की लीलाएं मधुर होती हैं, जिसे भागवत ग्रंथ कहा जाता है ना, तो उन लीलाओं को पढ़कर भी व्यक्ति का जो है सारे कलमश समाप्त हो जाते हैं और भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार भगवान ही नहीं, अगर भगवान के भक्तों का भी गुणगान होता है तो यह भी उतना ही, बल्कि उतना नहीं कहेंगे, उससे ज्यादा भगवान को प्रिय लगता है वो कार्य जब भगवान के भक्तों का गुणगान होता है। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, जो काम आपने कर दिखाया वो तो चैतन्य महाप्रभु भी कर सकते थे, स्वयं भगवान थे, प्रचार के लिए ही आए थे, तो वो क्यों भारत तक ही सीमित रहे और वो भी इसमें कुछ राज्यों में ही, या उसके बाद जो आचार्य लोग आए वो भी कर सकते थे? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, क्योंकि भगवान इसका श्रेय मुझे देना चाहते थे। क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं और पूरे लोकों में, सभी प्लैनेट्स में, सभी ब्रह्मांडों में, हर जगह भगवान की स्तुति हो ही रही है, लेकिन एक भक्त ऐसे हैं जो सेल्फलेसली भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, अपना जीवन भगवान को समर्पित करते हैं, मन बुद्धि इत्यादि, तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों के हाथों बिक जाता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भक्तों का भी गुणगान मेरे से अधिक होना चाहिए। इसलिए भगवान नाना प्रकार के तरीकों से अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने, उन्होंने बोला प्रभुपाद जी ने, कि भगवान ने श्रेय मुझे दे दिया, मेरे लिए छोड़ के रखा, नहीं तो भगवान को कुछ अगर करना है तो भगवान की जो इच्छा शक्ति है वो जब तक मन में आती है उससे पहले वो कार्य पूर्ण हो जाता है, भगवान को सोचना भी नहीं पड़ता ऐसी स्थिति, क्योंकि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो इस प्रकार सारे कार्यों को करती है कि जो हम लोगों को सोचना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, फिर सब कुछ करके तब जाके कोई काम कर पाते हैं ना, लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं। अध्यात्मिक पूरी तरह से चिंतन में आया कार्य होगा, तो भगवान को अगर इस पृथ्वी पे कुछ करना है, किसी को भक्त बनाना है या कुछ बदलाव लाना है, तो विचार आने की देर है बस, और कार्य हो जाता है। या फिर अगर चाहते हैं कि बदलाव आए तो फिर किनके द्वारा? अपने भक्तों के द्वारा करवाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी, भगवान के एक वो सेनापति हैं जिनको चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में बोला गया मोर सेनापति, कि एक ऐसा भक्त आएगा जो पूरे विश्व भर में इसको कर दिखाएगा। तो प्रभुपाद जी की बाल्य लीला से लेकर अंत्य लीला तक सुंदर मधुर डीलिंग्स हैं भक्तों के साथ, बाहर के लोगों के साथ। एक एक चीज प्रभुपाद जी ने कैसे करी, तो प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ में मिलती है। तो ये ग्रंथ है सबके पास? कितने लोगों के पास है प्रभुपाद लीलामृत? हाथ खड़ा करें। 10-12% कितने लोगों ने पढ़ी है प्रभुपाद लीलामृत, वो हाथ खड़ा करें। 50% ऑफ 12%, ओके स्टडीड, वो बड़ी है थोड़ा सा टाइम। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावन संघ में जुड़ने वाले भक्तों से ये प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि उन सबको चाहिए कि जब वो आए और थोड़ा बहुत चीजों को समझने लग जाए तो उन्हें तुरंत जो है प्रभुपाद लीलामृत अपने जीवन में जरूर पढ़ लेनी चाहिए कम से कम। इसको पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे प्रभुपाद जी वास्तव में है कौन, उन्होंने क्या कार्य कर दिखाया। हम लोग एक लेक्चर में प्रभुपाद जी की कुछ मुख्य घटनाओं को, वैसे सारी मुख्य हैं, अगर समझाना चाहें तो जैसे हर किताब में प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र दिया गया, 3 पेजेस में 4 पेजेस लिखा, तो कई बार उसको पढ़ते तो हमें लगता है ठीक है हम जानते ही हैं। हाँ 1922 में मिले, 33 में दीक्षा, तो बाहर आए, फिर किताबें लिखी, एडिटिंग की, या इतनी किताबें लिखी, फिर इतने मंदिर खोल दिए, कितना आसान है ना, सारे सेंटेंस खत्म कर दिए एकदम जीवन चरित्र। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, या इसके अलावा हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल हरीशौरी प्रभु ने ट्रांसेंडेंटल डायरी भी लिखी है, श्रुति कीर्ति प्रभु ने लिखी है व्हाट इज द डिफिकल्टी, लोकनाथ स्वामी महाराज ने लिखी है माय प्रभुपाद। इस प्रकार प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने प्रभुपाद जी के साथ होने वाली डीलिंग्स, जो उनको देखा, उनके कार्यों को देखा, उनकी योजनाओं को देखा, उस पर ग्रंथ लिख डाले, उस पर उन चीजों को लिख डाला। तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए, तो इसको बोलते हैं प्रभुपाद नेक्टर। ये वो रस है, ये वो ऊंचा रस है जो एक बार पढ़ ले या इसमें घुस जाए तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कम से कम इसको तो शुरू करें, उसके बाद जो और किताबें लाइन में लगी है वो भी पढ़ सकते हैं। देखिए हमारे पास जीवन कितना छोटा है, मैं तो जिस चीज पढ़नी हूं पढ़ नहीं पा रहा, बट इतना छोटा जीवन है हमारा। गलती से 100 साल ही मिले थे शुरुआत में, अभी 60-70 तक खत्म हो जाता है, और वो भी कन्फर्मेशन नहीं है उसकी कि आपको इतना जीना ही जीना है, ऐसा नहीं है ना, कभी कुछ भी हो सकता है। और उसमें हमारे पास 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, भगवद गीता है ना, और ये सब प्रभुपाद लीलामृत और उनके डिसाइपल्स के द्वारा लिखे गए और ग्रंथ, कितना कुछ है। अगर व्यक्ति रोज भी 2-4 घंटे लगाए तो कुछ हद तक कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार भगवान ने कहा वेदेश सर्वम अहम वेद्या, कि वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है, भगवदगीता में ऐसा बोला, तो बढ़िया कि हम भगवदगीता ही पढ़ लें तो काफी अच्छा है, कम से कम यहां से शुरुआत करें। भगवदगीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें हर भक्त को पढ़ना ही चाहिए अच्छे ढंग से, 2-2, 4-4 बार। भागवतम तो मतलब कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। और फिर चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु की सुंदर लीला, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, और फिर श्रील प्रभुपाद जी है ना। तो कम से कम इतने ग्रंथों को तो हमें चाहिए जीवन में एक बार अपनी आंखों के आगे से कम से कम 2-3 बार निकाल डाले, नहीं तो क्या है इनकी एक्सपायरी डेट भी खत्म हो जाएगी है ना, धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगेगा, शब्द दिखने लगेंगे, फिर आप कहोगे प्रभु जी किताबें मोटे अक्षरों वाली नहीं है, ये मोटे अक्षर थे, वो आपको आपने लेट शुरू किया है इसलिए ये छोटे हो गए ठीक है ना। तो जब तक आंखें ठीक हैं, बुद्धि ठीक है, समझ ठीक है, समय है, तब तक इसको पढ़ डालिए। नहीं तो क्या होगा, जब इन सब में फ्यूज होना शुरू होगा इन सब चीजों का, ठीक है ना, फिर किताब आंखें ठीक भी रही, आंखें अगर ठीक भी हैं तो इसका वो ज्यादा होगा, आंखें अगर ठीक भी हैं तो कई बार होता है क्या है कि हमारे हाथ हिलने लग जाते हैं, तो क्या वो फिर नहीं देखेंगे जैसे वो, है ना, तो शरीर हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं, खड़ा नहीं हो जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, तो कई तरह की दिक्कत 40-45 के बाद शुरू हो जाती है। तो सबसे प्रार्थना है कि यही समय है ये सब कुछ इकट्ठा करने का। जिस प्रकार हम लोग 15-18 साल से लेकर 60 तक धन कमाने का बहुत खूब प्रयास करते हैं, उसके बाद भी चक्कर में लगे रहते हैं कि 2 साल मेरे और बढ़ जाए नौकरी के, उसके बाद जितना भी है मतलब कर करके निकल जाऊं बस। तो उसी तरह हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपनी पूरी एनर्जी इसमें भी लगाएं, क्योंकि यही सब हमारे साथ जाना है। तो ये सुंदर ग्रंथों को जरूर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तभी उसको लगेगा कि हाँ मेरा जीवन सार्थक हुआ, मैं कुछ कर पाया इस जीवन में। अन्यथा तो यही कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, यही सब करना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो हम लोगों को पशुवत जीवन से दूर करती है। नहीं? जो लोग जी रहे हैं और खाली जी रहे हैं, तो शास्त्रों में कहा गया कि वो आहार निद्रा भय मिथुन, तो ये पशु की योनि में भी उपलब्ध है, चाहे अच्छे ढंग से करें चाहे बुरे ढंग से करें। लेकिन ये कुछ ऐसे गुण हैं जो हम लोगों को करने चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत से ही कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें कुछ एक प्रसंग ऐसा आ जाएगा, लेकिन बढ़िया यही है कि हमने बताया जैसे कि आप अपनी किताब लेकर अपना पढ़ना शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा। श्याम सुंदर जो कि प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल हैं, श्याम सुंदर ने प्रभुपाद से वायदा किया था कि उनसे मिलने बहुत से लोग आएंगे, और प्रभुपाद ने उत्तर में कहा था कि जब तक उनके आंदोलन में रुचि रखने वाले लोग उनके पास आते रहेंगे वे इंग्लैंड में ठहरे रहेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा प्रचार के मूड में रहते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक कि कुछ लोग ऐसे आते रहेंगे मेरे पास जो हमेशा रुचि रखते हैं भक्ति में, तो मेरा रुकना तभी वाजिब है। हर दिन रात में प्रभुपाद से मिलने एक दो मेहमान आ जाते थे, जिनमें विद्वान पादरी और कभी कभी विख्यात पुरुष शामिल होते थे। वे प्रभुपाद के साथ एक दो घंटे तक रुकते थे। प्रबुद्ध लोगों के सम्मुख कृष्ण भावनामित की विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए प्रभुपाद विशेष रूप से उत्सुक रहते थे। कृष्ण भक्ति का जो ये ज्ञान है ये टॉप मोस्ट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी ये टॉप मोस्ट फिलॉसफी है पीएचडी लेवल की रैंकिंग की। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में कहा कि जो वन हु नोज कृष्ण ही नोज एवरीथिंग, जिसने कृष्ण को तत्व से जान लिया वो हर चीज का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि इससे आगे बढ़कर कोई और ज्ञान नहीं। अभी पीछे कुछ समय पता चला कि कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो दूसरे धर्म के हैं, तो उन लोगों ने प्रयास किया अब हमारे ग्रंथों को भी पढ़ने का। हमारे ग्रंथों को पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं था कि वो जानकारी चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, उद्देश्य ये था कि वो चाहते थे कि हमारे जो धर्म को लोग दूसरे रूप से देखते हैं या दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो दृष्टि ठीक हो, और किस प्रकार हम लोग इन धर्मों के बीच के ग्रंथों को रिकंसाइल करके किसी तरह ये समझा पाए कि हमारा ग्रंथ कैसे सबसे ऊंचा है, या हमारे जो भगवान है जिन्हें हम पूजते हैं वो कैसे सबसे महान है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने सेंटर्स भी खोले, उन्होंने टीवी शो भी दिए, और उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि किसी तरह हम ये सिद्ध कर पाए कि जो हम फॉलो कर रहे हैं वास्तव में वही सब कुछ है। इवन आप लोगों के ग्रंथों में भी, इवन हमारे वेदों में, हमारे और ग्रंथों में भी उन्होंने कुछ मतलब, कई बार क्या होता है जब इस मेंटालिटी के साथ पढ़ा जाता है कि मैं इनके ग्रंथ से क्या निकाल लूं जो मेरे धर्म को सपोर्ट करता हो, मेरी बात को सपोर्ट करता हो और मेरे सिद्धांत को सही ढंग से रखता हो और दूसरे को डिफीट करता हो, तो जब इस मेंटालिटी से पढ़ा जाएगा तो वो ग्रंथ तो सब कुछ देगा आपको, तो उसमें ऐसे श्लोक भी दिखेंगे, ऐसे मंत्र भी दिखेंगे, ऐसे वेदों के अंदर ऐसी टीकाएं भी मिलेंगी जिससे व्यक्ति पढ़कर अपना काम निकाल सकता है। और जिन लोगों ने कभी ग्रंथ पढ़े नहीं, जो केवल आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए सामग्री इकट्ठी करते रहे। और ऐसे व्यक्ति के सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसने कुछ हमारे ग्रंथ पढ़कर ऐसी टीकाएं निकाली हुई हैं और अपने ग्रंथ की तो जानते ही हैं और दो चार चीजें सामने आपके बोल दे, तो पसीना पहुंचना पड़ेगा और आपको उसका लोहा मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी ग्रंथ खोला ही नहीं। हमने तो ग्रेजुएशन लेवल तक 100 किताबें पढ़ डाली, लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे अगर खोली किसी व्यक्ति ने एक भगवद गीता ही पढ़ ली जो कि सारे वेदों का सारे उपनिषदों का सार है, तो वो व्यक्ति जो है मतलब भक्ति में समझ लीजिए जिसने बैचलरशिप तो कर लिया, समझ। लेकिन हमारा साथ दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग न्यूज़पेपर तो शायद एक डेढ़ घंटा पढ़ लेते हैं, जिसकी शुरुआत ही रोज किसी न किसी प्रकार के रेप से, डकैती से या नाना प्रकार के नियमों से होती है। हमारा एक डेढ़ घंटा दो घंटा हम उसमें बिता सकते हैं, प्लस उसके बाद अपना विश्लेषण देने के लिए दो घंटा एक घंटा लोगों के साथ बैठते हैं, तो इतना समय इसके लिए निकाल सकते हैं जिसको कि आप क्या कोट करोगे ना, तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो कि आपको अप टू डेट रहने। वे कोई व्यक्ति बोले ना मुझे इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि प्रभु जी मेरे को जनरल नॉलेज चाहिए, ना आपका कोई ऐसा एग्जाम है, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें इतना समय बिताते हैं जबकि अपने ग्रंथ को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। तो क्या होता है जिस व्यक्ति के पास समय नहीं है अपने ग्रंथों को पढ़ने की, तो कल को कोई भी व्यक्ति आकर उसको दो इन्हीं ग्रंथों से चीजें कोट करके और 50-5 अपने ग्रंथों से कोट करके कुछ भी सिद्ध करके जा सकता है, उसको पानी पिला के जा सकता है और उसको मानना पड़ेगा हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं शायद, हाँ ऐसा ही है हम तो जानते ही हैं, खत्म। तो कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति में मतलब ऐसा नहीं कि खाली हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड हिंदुओं की नहीं, विश्व में हर व्यक्ति की बात कर, कि कम से कम उस व्यक्ति को भगवद गीता पढ़नी चाहिए। और हम जानते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार की चीजों को पढ़कर सिद्ध करना चाह रहे हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है या हम सारी चीजों को जानते हैं, वो जानते हैं जब वो ऐसी चीज निकाल रहे हैं उस ग्रंथ को पढ़कर कि जो उनके बात को सपोर्ट करती है, तो इसका मतलब उसने पूरा ग्रंथ तो पढ़ा होगा और पूरे ग्रंथ में उसने ये भी पढ़ा होगा, बाप रे बाप इसमें सब कुछ लिखा है, इससे तो पता चलता है असली चीज तो यही है, सब कुछ तो यही है, भगवान कौन है, रूप क्या है, सब कुछ। लेकिन उसने क्या निकाला उसमें से, खाली जो उस चीज को सपोर्ट करती है जो वो बताना चाहता है, वो जानता है हृदय से कि सही क्या है गलत क्या है। अरे देखिए ना, भारत में लोगों ने काफी राज किया, मुगलों ने राज किया लगभग 700 वर्ष, 200 वर्ष अंग्रेजों ने भी राज किया, सबने बड़ा प्रयास किया इस भारत की संस्कृति को, भारत के वैदिक सभ्यता को नष्ट करने का अलग अलग तरीकों से, जबरदस्ती से या प्रलोभन देकर या किसी भी तरह से। लेकिन आप देखेंगे कि इस देश के रगों में जो खून दौड़ रहा है, आर्यंस का दौड़ रहा है, आर्यंस मतलब वो लोग जो वेदों को जानते थे और पालन करते थे, उनके खून में है इस सब चीज, तो निकाल नहीं पाए। तो जो 900 साल में नहीं हो सका तो क्या एक दो लेक्चर से या कुछ टीकाओं को दिखाने से हो जाएगा क्या? नहीं। तो इस प्रकार जो चीज 900 सालों में कोई नहीं बदल पाया, इस देश में भक्ति के संस्कार लोगों के हृदय से मिटा नहीं पाए लोग, किसी व्यक्ति का एक लेक्चर नहीं बिगाड़ सकता कुछ भी। वो बात अलग है कि कोई प्रलोभन से, कोई किसी दृष्टि से, कोई किसी समस्या से कोई चीजों को बदल ले अपने, लेकिन इस तरह नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, इन ग्रंथों को पढ़कर, आचार्य की टीकाओं को पढ़कर, सारे दूसरे धर्मों के भी ग्रंथों को पढ़कर, इन ग्रंथों को इस प्रकार रचा ताकि कोई भी भक्त अगर इन ग्रंथों को पढ़ता है तो सीधा समझ लीजिए उसने वो लेवल प्राप्त कर लिया भक्ति का या नॉलेज का कि जो दूसरा व्यक्ति उसके सामने ठहर नहीं सकता। और जब ऐसे व्यक्तियों से जो चैलेंज करते फिरते हैं, ये बात कही जाती है कि आप हमारे को स्वीकार करें, आइए हम भी तो देखें आप ऐसी क्या चीज पढ़ रहे हैं। आप जो चीज कई बार बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान निराकार है, तो ये कोई बहुत बड़ी अच्छी चीज नहीं निकाल दी अपने ग्रंथों को पढ़कर। ये तो ऑलरेडी हमारे वेदों को पढ़कर कई धर्मावलंबी लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, क्या करो, भगवान निराकार है, सब लीन हो जाएगा। ये तो पहले भी लोग बोल रहे थे, आपने चार छह चीजें उसमें से कोट करके बोल दी तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन जब व्यक्ति सच में आगे बढ़ना चाहता है, सीरियसली भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो समझ पाता है कि ग्रंथों में लिखा है और हर जगह बताया गया है कि भक्ति को भगवान ने अलग अलग समय, काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग लोगों को अलग अलग टीचर के द्वारा समझाया। सबको एक धरातल पर नहीं समझा सकते थे, इसलिए कहीं पर तो निराकार ही सब कुछ बता दिया गया, कहीं पर सर्वव्यापकता भगवान की, परमात्मा और स्वरूप हर जगह कण कण में व्याप्त है इस रूप में बताया गया, और कहीं पर भगवान का, भगवान अर्थात सच्चिदानंद विग्रह के रूप में भगवान की स्तुति की गई। तो बताया गया है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि भगवान को तीनों तरह से समझा जा सकता है। वो बात अलग है जिस प्रकार प्रभुपाद जी इसी चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं, कि जिस प्रकार एक बार तीन छात्र हैं, एक टीचर है, उन्होंने कहा कि आप जो है सुबह निकलिए और जो सन प्लैनेट है उसके बारे में कुछ बताइए। वो बाहर निकला 12 बजे तो उसने कहा जी, उसकी डिस्क्रिप्शन थी कि सूरज को तो वास्तव में देखना ही बड़ा मुश्किल है, ये तो आपका धधकता हुआ गोला है, बहुत हीट छोड़ता है, इसको नहीं देखा जा सकता। दूसरा व्यक्ति को जब शाम को 6 बजे छोड़ा और उसने बाहर अंदर आया, उसने बोला नहीं, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्य तो बहुत सुंदर है देखने में, लालिमा है उसके अंदर, प्रकाश भी देता है। और जो तीसरा व्यक्ति था उसको बाहर नहीं दिया, उसको कहा तुम एक ग्रंथ पढ़ लो, तो उसने ग्रंथ पढ़ा कि सूर्य जो है एक प्लैनेट है जो इस प्रकार के ब्रह्मांड में को पूरा प्रकाशवान करता है और सारे ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट उसी से प्रकाशवान है, इसकी स्थिति इस प्रकार ऐसे ऐसे रहती है, और विवस्वान नाम के राजा हैं जो इसको एक घोड़े पर, जिसमें 7 घोड़े हैं, वो पृथ्वी के इस प्रकार चक्कर लगाते हैं। तो इन तीनों नॉलेज में, इन तीनों प्रकार ज्ञान तीनों ही है, लेकिन पहले वाला 2 को मना करता है, बीच वाला पहले और आखिरी को मना करता है, लेकिन जो आखिरी वाला है वो कहता है नहीं, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और हम तो ठीक हैं। तो अभी समाज में यही चल रहा है, जिन्होंने पहले दर्जे का ज्ञान प्राप्त किया है तो वह हमारे ग्रंथ को पढ़कर, किसके, विवस्वान वाला ग्रंथ, जिसने उस नॉलेज को पढ़कर देख रहा है, हां प्रकाश लिखा है इसमें, देखा हमारे यहां भी पूरा प्रकाश लिखा है, मैं बोलता था ना आपका गोला है, तो इधर भी प्रकाश लिखा है, तो ये मिल गया, बराबर है, तो हम जो है सबसे ऊंचे। दूसरे वाला अपनी परिभाषा देता है, और जो तीसरा है टॉप मोस्ट, वो क्या बोलते हैं, वो कहते नहीं नहीं नहीं, आप भी ठीक हो, आप गलत नहीं हो, जितना समय आपको बाहर छोड़ा गया, जो आपको दिखा उतना ही देखना था। दूसरा जो कहता है क्या कि नहीं, एक सुंदर प्लैनेट है, दिखता है, सर्वव्यापी है, तो बोलते हैं कि आप भी ठीक हो, क्योंकि जिस समय आपको छोड़ा गया उतने में आपको ये ज्ञान मिला, लेकिन हम भी ठीक हैं क्योंकि हमारे को ये सारी चीजें पता है, ठीक है ना। तो समाज में आजकल सुनने में आया कि इस प्रकार की कहीं पर वाद विवाद के कारण कई लोग इस प्रकार कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में इतने सारे एग्जाम्पल्स देकर, इतने सारे शास्त्र को कोट कर, वेदों को कोट कर, पुराणों को कोट कर, भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत को कोट कर, इन सब चीजों को एक सिरे से खारिज किया और बताया कि सही धर्म क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है एक महान, पूरे युग में ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसा कि प्रभुपाद जी, इनके आचार्य, इनके गुरुजन तो थे ही थे, सब एक से एक बढ़कर थे, बट प्रभुपाद जी को पूरा श्रेय दिया सुधर के प्रभुपाद इस चीज को कर सके पूरे विश्व। इसलिए आप लोग अगर आते हैं मंदिर और प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नहीं पढ़ते तो आपसे प्रार्थना क्या, पढ़ना शुरू करें, बच्चे प्रश्न पूछेंगे, पड़ोसी प्रश्न पूछेंगे, खुद के भी प्रश्न हैं, केवल ऐसे छोड़ छाड़ के आगे ना निकले, पढ़ें समझें और बताएं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया, देखिए ना, पादरी और कई तरह के जो है लोग प्रभुपाद जी से मिलने आ रहे थे, क्यों आते थे, ये चर्चा करते थे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठते थे। अब किताब खरीदिए द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें कई पादरी प्रभुपाद से मिलने आते थे और प्रभुपाद जी उनको बताते क्राइस्ट का मतलब क्या है, क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है, ईसाई धर्म का असली वो क्या है। वो कहते हैं आप जो हैं यीशु के बारे में क्या समझते हैं, रिपोर्टर जाके पूछते थे प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद जी बोलते थे वो भी हमारे गुरु हैं। उनको अच्छा लगता था, ओह हमारे यीशु को अपना गुरु बता रहे हैं। अरे बाबा प्रभुपाद जी ने तो कभी किसी से द्वेष किया ही नहीं, वो हर अच्छी चीज को अच्छा बोलते थे। गुरु क्यों बताया, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया क्या कि उन्होंने केवल अपने लोगों को वो ज्ञान दिया और उसके बदले जब लोगों ने उनको सूली पर भी टांग दिया, क्रूसीफाई कर दिया, तो भी वो क्या बोलते रहे कि हे भगवान आप इन लोगों को क्षमा कर देना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी दूसरा कोट करते हरिदास ठाकुर जी को भी, वो भी ऐसे ही थे है ना। उनको जब 22 बाजारों में ले जाकर पीटा जा रहा था तो वो केवल एक ही चीज बोल रहे थे क्या कि भगवान इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था उन सबको मारने के लिए, लेकिन क्योंकि तुम बार बार प्रार्थना कर रहे थे कि ये ना मरे, इनको कुछ ना हो, इसलिए कुछ नहीं करा, वापस आ गया सुदर्शन चक्र। तो इस सेंस में सीखने के भाव से प्रबंध बोले ये यीशु हमारे गुरु। लेकिन प्रभुपाद जी की इस प्रकार की शालीनता को देखकर और दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान भाव देखकर सब लोग उनसे आकर्षित हुए। प्रभुपाद ने कहा मैं कन्वर्ट करने नहीं आया किसी को, मैं तो ये बताने आया हूं कि सही धर्म क्या है। वो कहते थे हम भी तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे आप भी धर्म का प्रचार कर रहे हो, लेकिन आप जिस धर्म का प्रचार कर रहे हो उसमें आप लोगों ने अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर दिए। जब जो यीशु की जो कमांडमेंट थी उसको एज इट इज फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम भगवद गीता भागवतम को एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे ही देश के लोग अब कृष्ण भक्ति से आकर्षित हो रहे हैं। हम तो उनको कहते हैं कि अगर आप इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं तो एक दिन में 5 वक्त की नमाज को अदा करो। अगर वो क्रिश्चियन है तो उसे चाहिए कि 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करें, है ना। तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार की बात कही। तो प्रभुपाद जी की इन सुंदर गुणों को देखकर लोग उनसे आकर्षित होते थे, उनकी फिलॉसफी की अंडरस्टैंडिंग को देखकर लोग उनसे आकर्षित होते थे, चाहे वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो या कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, हर व्यक्ति प्रभुपाद जी की बात का लोहा मानता था। और फिर जैसे ही भगवान के नामों का जप करना शुरू करते थे तो उनका जीवन बदल जाता था। तो यहां जो श्याम चंद्र से बात हो रही है वो भी प्रभुपाद जी के एक बहुत कर्मठ डिसाइपल थे। तो बता रहे हैं कि प्रबुद्ध लोगों के सम्मुख कृष्ण भावनामृत की विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए प्रभुपाद विशेष रूप से उत्सुक रहते थे। वैष्णव परंपरा में गीता और भागवत के संसार के सबसे बड़े दार्शनिक के रूप में प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य के निष्कर्षों को पूर्णतः आत्मसात कर लिया था। नास्तिक दर्शनों और सभी चुनौतियों को काटने में वे निष्णात थे, क्योंकि पूरा का पूरा देखिए भागवत और भगवद गीता में पूरा ज्ञान था। तो वो फिर इसको पढ़ने के बाद वो किसी की भी फिलॉसफी को काट सकते थे, क्योंकि टॉप मोस्ट उन्होंने कर लिया। और वे जानते थे कि ईसाइयों, मायावादियों, अन ईश्वरवादियों और उनकी तरह के अन्य लोगों से किस बात की आशा की जा सकती है। जिनका ज्ञान ही उतना है उनसे क्या आशा की जा सकती है। यदि कोई अभ्यागत किसी ऐसे दार्शनिक या संप्रदाय का उल्लेख करता जिसे प्रभुपाद ना जानते हो तो वे सरल भाव से पूछ बैठते उसकी विचारधारा क्या है। अनिवार्यता वे उस नई विचारधारा का मूल्य आंक कर कहते कि यह वही पुरानी परिचित सांस्कृतिकता से लिप्त विचारधारा है जिसमें शायद एक नया मोड़ मिला दिया गया है। वे आसानी से उसे पराजित कर देते या कृष्ण भावनामृत से मिलाकर उसे पूर्णता प्रदान करते। देखो इतने बड़े फिलोसफर थे प्रभुपाद जी, कि अगर मिलने वाले लोगों में कोई एक नई प्रकार की विचारधारा का भी व्यक्ति आ गया, जैसे आप लोग बैठे हैं सारे सज्जन पुरुष है ना, और मिलने के लिए आए हैं, तो कोई ज्यादातर तो हम लोग 5-6 प्रकार के धर्मों को जानते हैं ना, लेकिन कोई आदिवासी आ गया, कोई कहीं का आ गया, कोई किस जगत का आ गया, कोई कहां का आ गया, और वो कुछ अलग से प्रश्न पूछने लग जाए और बोलने लग जाए जी एक विचारधारा ये भी है, तो प्रभुपाद जी पूछते थे कि आपकी फिलॉसफी क्या है बताइए, तो फिर वो बताता था कि हमारे धर्म में ये कहा जाता है, ये करने को कहा जाता है और ये नहीं करने को कहा जाता है, और इस प्रकार भक्ति किया जाए। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये जो तुम्हारे इसमें लिखा है यही तो भगवदगीता और भागवतम में लिखा है। भगवदगीता 5000 साल पहले बोली गई, भागवतम 5000 साल पहले बोली गई, वैदिक साहित्य हमें सृष्टि के आरंभ में प्राप्त होते हैं। तो ये जो आपने अभी बोला, जो आपका हो सकता है 1300 साल पुराना हो सकता है 2500 साल पुराना हो सकता है 2000 साल पुराना ग्रंथ हो, लेकिन ये सब शिक्षाएं ली इसी से गई है, समझ पा रहे, या फिर उन शिक्षाओं का कहीं ना कहीं मिलान होता है। तो प्रभा जी इस प्रकार उन सब चीजों को बताते थे। जिस प्रकार जब वर्षा होती है तो बड़ी बड़ी नदियों से कुछ पानी, बरसात का पानी जो छोटी छोटी नदियों और तालाबों के रूप में इधर उधर बह जाता है ना, लेकिन ये सब छोटी नदियां बाद में बड़ी नदी में मिलती हैं और फिर बड़ी नदी सीधा सागर में मिलती है। उसी प्रकार जो छोटे मोटे धर्म रिलीजन भी बने, जिस प्रकार बोली पहले एक ही थी ना लैंग्वेज, फिर धीरे धीरे जो लोग घर परिवार से झगड़कर राज्य लेकर इधर उधर चले गए, अपनी अलग फौज बना ली, अलग भाषा, अपने सिक्के अलग, हर चीज अलग है ना, तो उसी प्रकार हर कुछ अलग हो गया। पूरे भारत में पता नहीं कितनी तरह की बोलियां और विश्व भर में तो फिर बहुत ही सारी, तो इतने सारी तरह की बोलियां, इतने सारे रीति रिवाज बन गए थोड़ा सा अलग अलग कर। उसी प्रकार भगवान ने भी क्या किया, जब गीता भागवतम बोली तो उसके साथ साथ अन्य, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, हर तरह की जाति के लोग होंगे, हर तरह के बोली के लोग होंगे, हर तरह का उनका मेंटल लेवल होगा, तो उनको इन्हीं ग्रंथों से संबंधित ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजकर जो कि कहीं ना कहीं जिसका आशय इन्हीं ग्रंथों से मिलता हो, निराकार रूप में, परमात्मावादी रूप में या भगवानवादी रूप में, तो उस फिलॉसफी को रखते हुए ग्रंथों को उतारा ऊपर से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ उन्नति कर सके। सर प्रभुपाद कृष्ण की महिमा का गुणगान करने और उनका संदेश दोहराने का में सदा उत्सुक रहते थे, और पूरे उत्साह एवं ताजगी के साथ वे उन्हीं बातों को फिर फिर दोहराते जिन्हें वे पहले कई बार दोहरा चुके होते। देखिए हमें लगता है कि कई बार अभी हमें पता तो चल गया ना कि आत्मा है ना, तो कुछ नया बताइए प्रभु जी। एक बार प्रभुपाद जी ने लेक्चर दे रहे थे तो बीच में से एक व्यक्ति उठा, उसने बोला प्रभुपाद तो बहुत सुन लिया, हमें पता चल गया कि हम शरीर नहीं आत्मा। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा कितनी बार सुना आपने, कहते इतनी बार। तो प्रभुपाद ने कहा अभी और सुनो, अभी और जरूरत है आपको, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह मालूम पड़ गया खाली नॉलेज के बेस पर, ज्ञान के बेस पर, हाँ शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन उसने रियलाइज नहीं किया ढंग से, उसके कर्म अभी भी देहात्म बुद्धि पे हो रहे हैं, तो उसको बार बार सुनना पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है और केवल सुखी फिलॉसफी पढ़ रहा है तो उसका हृदय भी खोखला रहेगा, भक्ति नहीं रहेगी, लेकिन जो व्यक्ति इसको पढ़कर सुनकर समझकर जीवन में उतारता भी है, उसके कर्म उसके क्रियाओं में ये ज्ञान आता है दिखता है, वो व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा कि बार बार रिपीट मत करो, क्योंकि उसको फिर उसमें इतना टेस्ट आएगा, उन सब चीजों को सुनने में खूब आनंद आएगा। तो प्रभुपाद जी बताइए कितने सालों तक शरीर नहीं आत्मा है बोलते रहे ना, इधर भी बोला भारत में, अमेरिका के उधर भी बोला, रशिया के उधर भी बोला, हर जगह इंडिया है तो यहां पर भी इनको आहार निद्रा भय में तुम सिगारत, तो पूरा पूरा जीवन जो प्रचार किया एक ही बात दोहराते रहे। अभी कोई व्यक्ति या कोई सॉन्ग या कोई फिल्म बनती है तो एक बार देखने के बाद व्यक्ति दोबारा हॉल में नहीं जाता, या कई बार बहुत बार जाता है तो क्योंकि समझ नहीं आती इसलिए जाता है, ठीक है। तो कुछ फिल्मी सॉन्ग है कुछ है तो कुछ समय के बाद वो फीका पड़ जाता है, वो नहीं सुनना चाहता उसको, फिर वो कहता है ओल्ड इज गोल्ड, पुराने सुनूंगा जाके, फिर तो फिर फौजी भाइयों की छाया गीत सुनता है ना, उसको सुनता है फिर उससे बोर होता है फिर कुछ नया सुनता है। तो उसी प्रकार जो लोग किस संदर्भ में बता रहे थे, एक व्यक्ति बोले आत्मा के बारे में, तो जिन भक्तों को अंदर ये ज्ञान है, जिन्होंने रियलाइज कर लिया है, तो वो लोग इस चीज को बार बार सुनना चाहते हैं, मुहर मुहर बार बार सुनना चाहेंगे। तो प्रभुपाद जी बार बार बोल बोल के थक नहीं रहे, कई कई सालों तक एक ही चीज बोल रही, और उसका प्रभाव क्या था कि जितने लोगों ने सुना उनके हृदय भी बदलते गए थे। तो कहते हैं जिन्हें वे पहले कई बार कह चुके थे वही रिपाइट करते थे, वे कहते थे कि वे उस गाय के समान है जो हर खेत में दूध देती है, उन्हें कोई भारत में रखे, अमेरिका में रखे या इंग्लैंड में रखे, भगवद्गीता का वही अमृत तुल्य दूध सर्वत्र देंगे। तो प्रभा जी बता रहे हैं मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरा काम है खाली दूध देना, गाय की तरह दूध देना। अब उस गाय को आप चाहे खेत में रखो, भारत में रखो, अमेरिका में रखो, उसे क्या करना है, दूध ही देना है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उसके ग्राम। प्रभुपाद का पूरा दिन दर्शन को समर्पित था, चाहे वे चैतन्य चरितमृत पर बड़े तड़के डिक्टेशन दे रहे हो, प्रातः भ्रमण पे निकले हो, भगवत गीता पर भाषण दे रहे हो, या अभ्यागतों से वार्तालाप कर रहे हो। देखिए कितनी तरह की चीजें। प्रभुपाद जी को कई लोग पत्र लिखते थे, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, कहीं कोई समस्या है, कुछ फिलोसफिकल चाहिए, तो पत्रों से उनका जवाब देते थे। तो बताते हैं लगभग 17-18 हजार से अधिक पत्र लिखे प्रभुपाद ने। आप लिख सकते हैं, आप तो जल्दी से कॉपी पेस्ट करेंगे इंटरनेट में जाके और सीधा करके ग्रुप में जाके मेल कर देंगे है कि नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, अपने हाथों से इन पत्रों को लिखा, जवाब दिया। इतना ही नहीं, इतने सारे ग्रंथ लिखे जो आज तक हमारे लिए, इस्कॉन के लिए बहुत बड़ी धरोहर है पूरे विश्व के लिए। फिर डिक्टेशन देते थे, ठीक है, डिक्टेट भी करते थे, फिर उसको मैनुस्क्रिप्ट में आता था। उसके बाद अगर वॉक पे भी जा रहे हैं तो 20-50 डिवोटी हमेशा साथ रहते थे। तो आप प्रभुपाद जी की मॉर्निंग वॉक देखेंगे वीडियोज और फोटोग्राफी में, तो हर जगह केवल कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। तो प्रभुपाद जी की वो मॉर्निंग वॉक भी जो थी, जो उन लोगों ने रिकॉर्ड किया, वो भी अपने आप में ग्रंथ बन गए, क्योंकि प्रभुपाद जी सब कुछ जानते थे। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी ने कुछ बहुत कुछ गलत बोल दिया तो वो हटा दिया गया, अब ये लगा दिया गया, नहीं। वन हु नोज कृष्ण ही नोज एवरीथिंग। प्रभुपाद जी की जिन जो वॉक हुई थी उन पर भी बुक्स है और वो भी लोगों का मार्गदर्शन बहुत अच्छे ढंग से करती है। पत्र भी प्रभुपाद जी के जो है वो भी लोगों के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन का केंद्र है। लेक्चर्स है और जो चुनौती देते थे, जो लोग मिलने आते थे, या टेलीविजन वाले आ गए या रिपोर्टर्स पहुंच गए, उन सबके साथ जो भी वार्ता चलती थी वो सब क्या बन गई, लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। फिर बता रहे हैं कि स्कॉटलैंड में जब एक व्यक्ति ने चुनौती दी थी कि भगवान को दर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, आप मुझसे किस विषय पर वार्ता करने की आशा करते हैं। तो एक व्यक्ति आ गया कि दर्शन मतलब फिलॉसफी से नहीं समझना चाहिए भगवान को, तो प्रभुपाद ने कहा मेरे पास आए किस लिए, फिर समझ क्या समझना है, आप मुझसे किस विषय पर वार्ता करने की आशा करते हो, क्या मैं परियों की कहानी सुनूं भैया अगर फिलॉसफी नहीं चर्चा करोगे, भगवान को नहीं समझना चाहते और इस पर नहीं चर्चा करनी, तो मैं तुम्हें बस कहानियां सुनाऊं परियों की, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। दर्शन आवश्यक है विशेषकर तथाकथित प्रबुद्ध व्यक्तियों के लिए जिनके मन में तरह तरह की बौद्धिक शंकाएं उठती रहती हैं। इसके अतिरिक्त कृष्ण के संबंध में लोगों को बताते रहना प्रेम का लक्षण है। कोई अगर बार बार कृष्ण के बारे में बोल रहा है या फिलॉसफी चर्चा कर रहा है तो इसका भगवान के प्रति प्रेम जो है वो प्रदर्शित होता है। दूसरे के कष्टों से द्रवित होकर प्रभुपाद सदैव कृष्ण के संदेश के बारे में बात करते थे और ऐसा करने में वे कभी थकते नहीं थे। देखिए 70 वर्ष की उम्र में शुरू किया था प्रभुपाद जी ने, और लगभग उसके बाद 77 तक प्रभुपाद जी नॉन स्टॉप, इवन जब डेथ बेड पे भी थे, बहुत बीमार थे, तो भी डिक्टाफोन पर प्रभुपाद जी आखिरी में ट्रांसलेट करते थे। प्रभुपाद ने सिखाया कि व्यक्ति को अगर प्राण का त्याग करना है तो कैसे करना चाहिए। जीवन भर एक एक सांस कृष्ण की बात करते हुए, भक्तों को उपदेश देते हुए, आखिरी सांस तक जब भी कुछ शब्द निकल सकते थे रूपा जी श्रीमद भागवतम का दसम स्कंध ही डिक्टेट करते हैं। तो इस प्रकार रूपा जी ने समझाया दिखाया। तो बता रहे हैं यहां पे दर्शन आवश्यक था विशेषकर तथाकथित। तो बता रहे कि फिलॉसफी इसलिए जरूरी है कि जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कि कुछ न कुछ तर्क देकर भगवान को नहीं मानना चाहते या कुछ न कुछ भी लाओ पहले सामने लाओ फिर हम पूजेंगे, है ना, इस तरह के जो नास्तिकवादी हैं या जो फिलॉसफिकली नाना प्रकार की जिन्होंने कई प्रकार के इज्म को अपना रखा है ना, तो प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे लोगों के लिए दर्शन जरूरी है। यहां बता रहे प्रभुपाद जी की वे सच्चे मन से उन निरीश्वरवादी विचारकों से असंतुष्ट थे जो लोगों को भ्रमित करते थे। प्रभुपाद जी को लगता था कि जो निराकारवादी हैं, जो नास्तिकवादी हैं, जो लोग भगवान के रूप को नहीं मानते, प्रभुपाद जी के हृदय में लगता था कि क्यों नहीं समझ पा रहे बातों को और क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकतावादी और विशेष और निर्विशेषिक दर्शनों से किसी व्यक्ति के जीवन में दुख से मुक्ति पाने के सारे अवसर नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जब भी किसी को मायावादी सिद्धांत के पक्ष में बोलते सुनते तो वे आग बबूला हो जाते। मगर कोई बोलता था ना कि नहीं भगवान नहीं है, सब बेकार है, जो है यही है, हम और भगवान एक है, कोई रूप नहीं है भगवान का, तो प्रभुपाद को आग लग जाती थी। और पूरी किताबों में आप पढ़ोगे तो हर जगह मायावाद का खंडन किया है। आपको तो पता नहीं, आजकल तो उस तरह के मायावादी मिलते भी नहीं, और मिलते भी हैं तो दूसरे टाइप के मायावादी होते हैं जो नास्तिक टाइप के होते हैं। मतलब पहले तो मायावादी फिर भी थोड़े स्कॉलर समझदार टाइप के होते थे, वो मायावाद को प्रेजेंट करने के लिए भी शास्त्र कोट करते थे। आजकल के जो नास्तिक हैं ये तो इतने गिरे हुए हैं कि जो ना तो किसी तरह की नॉलेज रखते हैं ना कोई ग्रंथ पढ़ा है, हम नहीं मानते, बस पहले दिखाओ तो मानेंगे। तो इनकी स्थिति तो उन मायावादियों से भी कहीं गुजरी है। वे इसे सहन नहीं कर सकते थे, उन्हें उसे सही मार्ग पर लाना पड़ता था। जब मनोर में अपने एक व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने एक लड़के को यह कहते सुना कि किसी ने उसे बताया था कि हरे कृष्ण का कीर्तन एक प्रकार का झांसा है, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, कौन कहता है कि यह झांसा है, वह मूर्ख कौन है, वह दुष्ट कौन है। कृष्ण की महिमा को बनाए रखने के लिए वे अनिश्वरवादियों से लड़ने को तैयार थे। ये प्रभुपाद की स्वाभाविक प्रवृत्तियां थी, अतः बिना रुके वे चलते जा सकते थे और आगे चलते जा सकते थे। वे लोगों को कृष्ण भावनामित देना चाहते थे, उन्हें दूसरा जीवन नहीं मिलना चाहिए, उन्हें दूसरा जीवन नहीं मिलना था। अपने कक्ष के एकांत में विश्राम करते हुए भी वे सदैव कृष्ण भावनामित ही बात करते थे। भक्तों ने अनेक सुविख्यात अंग्रेज नागरिकों को श्री प्रभुपाद से मिलने के लिए आमंत्रित किया था। आमंत्रितों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया रही। अर्थशास्त्री अनर्स शूमेकर ने प्रभुपाद से मिलने का वचन दिया और दार्शनिक सर अल्फ्रेड जे आबर ने भी, जब श्याम सुंदर ने प्रभुपाद को बताया कि आयर विख्यात दार्शनिक हैं, तो प्रभुपाद ने पूछा उनका दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। प्रभुपाद बोले, मैं उन्हें प्रमाण दूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि ईश्वर के अस्तित्व से उनका तात्पर्य क्या है, मैं उनसे ईश्वर के अस्तित्व की कमियों की एक सूची बनाने को कहूंगा। प्रभुपाद को दार्शनिकों से मिलकर उन्हें कठिनाई में डालकर पराजित करना पसंद था। तो जो नास्तिकों से पूछेंगे, भाई तुम क्यों नास्तिक हो ये बताओ पहले, है ना, क्या कारण है तुम्हारा नास्तिक होने का, लिखो। इतिहास वेता अनॉल्ड टायन भी वृद्ध और अशक्त थे, अतएव प्रभुपाद उनसे उनके घर पर मिलने को सहमत हो गए। डॉक्टर टायन भी की रुचि मृत्यु के बाद जीवन पर चर्चा करने में थी, अतः उन्होंने प्रभुपाद से कर्म के विषय में पूछा। उन्होंने कहा अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं। प्रभुपाद ने इसे स्वीकार किया और कहा कि एक ज्योतिष के अनुसार भारत के एक हाल ही के नेता ने कुत्ते के रूप में जन्म लिया है। रूपा जी कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अतः वह भयभीत है कि उसका पतन होगा। जब टैंबी ने पूछा कि क्या कर्म बदला जा सकता है तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया हां किंतु केवल भक्ति से। वैसे नहीं बदल सकता आप कर्म, एक कर्म को बदलने के लिए दूसरा कर्म करोगे फिर कर्म बनने लगेगा। केवल भक्ति से ही कर्म को समाप्त किया जा सकता है, बदला जा सकता है। टैंबी ने बोला पश्चिम में इस तरह सोचने वाले बहुत लोग नहीं है। प्रभुपाद ने वे कम बुद्धि वाले हैं, यह अच्छा नहीं है। यदि वे कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लें तो वे अपना कार्य करते हुए नगर में रह सकते हैं, किंतु वे अपनी चेतना में परिवर्तन ला सकते हैं, तब हर चीज स्वतः प्राप्त हो जाएगी। श्री प्रभुपाद ने उस ग्रंथ के बारे में पूछा जो टैंबी लिख रहे थे और प्रोफेसर टैंबी ने उत्तर दिया कि वह ग्रंथ वर्तमान ग्रीस पर प्राचीन ग्रीस के प्रभाव के संबंध में था। प्रभुपाद ने कहा ग्रीक लोग भारत से आए थे, वैदिक संस्कृति किसी समय समस्त संसार तक फैली थी, धीरे धीरे एक नए प्रकार की संस्कृति का आगमन हुआ, जैसे अभी हाल में भारत और पाकिस्तान का विभाजन से एक नई संस्कृति उत्पन्न हो गई ना। प्रभुपाद ने बताया कि किस तरह भविष्य में सरकारें बदमाशों और चोरों के हाथों में पड़ जाएंगी, जिनका एकमात्र धंधा जनता का शोषण करना होगा, खाद्यान्नों का अभाव होगा और सरकारें इतने अधिक कर थोपेगी कि जनता परेशान होकर जंगलों की शरण में भागेगी। आप लोगों के बारे में बता रहे हैं, मतलब हम लोगों के बारे में, कि सरकार इतने टैक्स वसूल करेगी, चोर और चक्कों और बदमाशों की सरकारें बनेगी और केवल हर बात पर टैक्स लगाएंगे। इधर क्यों देखा टैक्स, इधर क्यों थूका टैक्स, इधर क्यों किया टैक्स, है ना, ये खरीदा तो टैक्स, वो बचा तो टैक्स। तो टैक्स कर ले लेकर व्यक्ति कह सारे को पैसे तो सैलरी तो टैक्स में चली जाती है, तो क्या करेगा, कहेगा इससे बढ़िया तो क्या था, अपने गांव के खेत बेचकर आ गया मैं, है ना, गांव में था, गायें थी, खेती करता था, कुछ तो चिंता नहीं थी, हर प्रकार की चीजें घर में उगती थी, फ्रेश होती थी, बढ़िया खाते थे, सब इकट्ठे मिलते थे, गाय का दूध पीते थे, छाछ पीते थे, क्या जीवन था। खेत बेच दिए, कुछ पैसे मिले, दिल्ली आ गया, एक जॉब करी, किराए पर मकान लिया, अब अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बट इतने टैक्स हैं कि यहां रहना मुश्किल है, कहां चलो, वापस गांव चलो। लेकिन गांव की जमीन बेच दी, उधर भी गांव भी थोड़ा शहर के रूप में बदल रहे हैं, तो कहां चलो, जंगलों की तरफ चलो, वहां कुछ ना कुछ मिलेगा खाने के लिए, वही छोटी झोपड़ी बनाएंगे और हा हा हू हू करेंगे, वहीं रहेंगे, ठीक है ना, फिर नई आदिवासी जनता तैयार होगी। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये सब जो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, भागवतम में भी लिखा है, तो प्रभुपाद जी वही चीज बता रहे हैं। हाँ, जंगलों में चले जाएंगे, केवल ईश्वर चेतना वाले लोग बच पाएंगे, जिनकी चेतना ईश्वरवादी है, भगवानवादी, वही बच पाएंगे। भविष्य दोषों का सागर होगा, किंतु बचाव का केवल एक मार्ग ही वो होगा, क्या, केवल कृष्ण के नाम का जप करने से दोषों से मुक्ति हो सकेगी। प्रभुपाद ने कहा कि आज भी हिप्पी लोग जंगलों को जा रहे हैं, लोग अपनी पत्नियों और धन से अलग होकर निराशा में जंगलों और पहाड़ों की लार ले रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा इस तरह आप भविष्य के बारे में जान सकते हैं। तो आर्नोल्ड टैंबी ने बोला भारत में क्या राजनेता लोग वेदों को रखते हैं। प्रभुपाद ने नहीं, उन्होंने वेदों को फेंक दिया है। वर्तमान भारत के राजनेताओं को वेदों से संतोष नहीं है, उन्होंने वेदों को पानी में फेंक दिया है। मैंने भारतीयों और अमरीकियों में नए सिरे से आरंभ किया है, तो फिर से शुरू हुआ है, और अगले 10,000 वर्षों में कृष्ण भावनामृत की वृद्धि होगी, तब कलयुग का बुरा समय आएगा। 10,000 वर्ष कोई अल्पकाल नहीं है, कृष्ण के लिए यह हमारा धर्म है। अर्नोल्ड, क्या आप बहुत अधिक यात्रा करते हैं?
प्रभुपाद,
हाँ, सारे विश्व की। तो इस प्रकार जो है प्रश्नों के उत्तर देते थे प्रभुपाद जी। अब इसके बाद से आगे और भी चीजें आप पढ़ें तो अच्छा लगेगा आपको। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की। हिताय गौर प्रेमानंदे।